हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 339। दूसरी तरफ अक्षत का बंगला। अक्षत बाकी सबसे पहले घर वापस आ गया, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो बैक गेट से अंदर आया और सिक्योरिटी गार्ड या फिर उसके घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में वो नज़र नहीं आया। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं रागिनी या फिर उसके लिए काम करने वाला कोई उस पर या उसके घर पर नज़र रखे होगा, और उसने रागिनी से ये झूठ बोला है कि वो फ़िलहाल अपने घर पर नहीं रह रहा है क्योंकि उसका बंगला उसने नैना के नाम कर दिया था, और रागिनी ने उसकी इस बात पर शायद भरोसा भी कर लिया है, और इसीलिए वो हमेशा जब भी उससे मिलती है तो उस पर केस करने या फिर अपना पैसा प्रॉपर्टी वापस लेने के कोई ना कोई सिली आइडिया देती रहती है, लेकिन वो सच एक्सेप्ट नहीं कर रही और ना ही अक्षत से दूर हो रही है। अक्षत अपने बंगले के लिविंग एरिया में अकेला बैठा हुआ अपना सिर पकड़कर ये सब कुछ ही सोच रहा है, और तभी मेन गेट से स्वीटी, नैना और विवान भी अंदर आए। पिछली रात को ही विवान से बात करके अक्षत ने उसे भी इन सब में शामिल कर लिया है क्योंकि उसे पता था विवान ऐसे मामलों में उसकी मदद कर पाएगा। विवान ने अक्षत को इस तरह से परेशान नोटिस किया तो उसके पास आकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ भाई, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? पक्का उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होंगे। मैंने कहा ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। विवान की बात सुनकर उसके पास से निकलती हुई स्वीटी ने पूछा, कौन सी प्रॉब्लम, कोई बात है क्या? अक्षत नहीं चाहता कि स्वीटी भी इन सब में शामिल हो, इसलिए उसने विवान की तरफ घूर कर देखा तो विवान ने ज़बरदस्ती अपने दांत दिखाए और वो कुछ भी बोलता इससे पहले अक्षत ही सफाई देने वाले अंदाज में बोला, नहीं स्वीटी, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो बस हमारी मूवी को लेकर बात कर रहा है। स्वीटी ने बहुत ही प्यार और अपनेपन से कहा, ओ अच्छा, मुझे लगा शायद आप लोग किसी और बात को लेकर परेशान हैं। अभी ने उन तीनों के बीच की बातें सुनी और वो समझ गई कि अक्षत नहीं चाहता है स्वीटी को इन सब के बारे में कुछ भी पता चले। वो बहुत ही इनोसेंट एक नॉर्मल लड़की है और उसे फिल्म इंडस्ट्री, उसमें होने वाले ये सारे ट्रिक्स, टैंट्रम्स और कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो लोग इन सब से स्वीटी को दूर ही रखना चाहते हैं, और फिर वो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सुनैना और आदित्य के एब्सेंस में वहाँ पर रह रही है। इसलिए नैना आगे आते हुए बोली, स्वीटी तुम थक गई होगी ना, कितने टाइम से मेरे साथ वहाँ हॉस्पिटल में थी, जाकर रेस्ट कर लो और फिर सब साथ में डिनर करेंगे। स्वीटी ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं इतना भी नहीं थकी मैं, और जो भी थकान थी वो भाभी को होश में देखकर पहले ही कम हो गई, लेकिन हाँ थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, शावर ले लूँगी तो ठीक लगेगा। नैना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, जाओ शावर ले लो। नैना की बात पर स्वीटी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए वो वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ ही चली गई। उसके वहाँ से जाते ही अक्षत और नैना दोनों ने ही विवान को थोड़ा डांटते हुए कहा, विवान थोड़ा आसपास देखकर बात किया करो, नैना ने उसे समझाया। इस बार अक्षत ने आगे कहा, हाँ विवान ध्यान रखा करो, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं, हम स्वीटी को इन सब में शामिल नहीं कर सकते। और दोनों की बात सुनकर विवान बोला, ओके भाई, ओके भाभी, इट्स माई फॉल्ट, सो आई एम सॉरी, और मैं अब इस बात का ध्यान रखूंगा। अक्षत ने उससे एकदम सीरियस होकर पूछा, ओह दैट्स गुड, लेकिन ये बताओ कि क्या तुम्हें कुछ पता चला जो तुमने हमारी मदद के लिए पता करने का बोला था? विवान तो जैसे बस उसके पूछने का ही इंतजार कर रहा था, और उसके ये सवाल करते ही विवान भी एकदम सीरियस होकर उसे पूरी बात बताना शुरू करता है। हाँ भाई, वो रागिनी इससे पहले दो और लोगों को इसी तरह से फंसा चुकी है, लेकिन उनमें से एक को उसने फोटो से ब्लैकमेल किया था और दूसरे के साथ सेम यही प्रेगनेंसी वाला नाटक कर चुकी है, और फिर उसने बोला था कि उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन दोनों से उसने काफ़ी पैसे ऐंठे हैं। ये सारी बातें सुनते हुए वहाँ पर बैठी नैना की तो आंखें हैरानी से इतनी बड़ी हो गई क्योंकि उसने सोचा नहीं था रागिनी या कोई भी लड़की ऐसा भी कोई काम कर सकती है, लेकिन अभी तो वो रागिनी का एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने ही देख रही है, इसलिए उसके पास विश्वास ना करने की कोई वजह नहीं है। ये सारी बात का पता चलते ही अक्षत खुश होते हुए बोला, ओह दैट्स ग्रेट, ये इन्फॉर्मेशन हमारे काफ़ी काम आ सकती है, वैसे कौन है वो दो लोग? विवान ने अपने हिसाब से काफ़ी कुछ पता कर लिया था, इसलिए वो उनके नाम बताते हुए बोला, एक तो वो नया हीरो है अर्पित मल्होत्रा, और दूसरा वो डायरेक्टर सुजॉय, दोनों का ही करियर अब कुछ इतना खास नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले उनका इंडस्ट्री में काफ़ी नाम था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त आपका है, और ऐसे लोगों को ही अपने रेपुटेशन स्पॉइल होने का डर होता है। रागिनी के बारे में ये सारी बातें पता चलते ही अक्षत को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो एकदम इंटेंस चेहरे के साथ बोला, बट मुझे ऐसा कोई भी डर नहीं है, और इस बार वो रागिनी डरेगी क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका पाला इस बार अक्षत खन्ना से पड़ा है। मैं दिखने में चाहे जितना भी जेंटलमैन और सॉफ्ट हूँ, लेकिन जब बात अपने करियर पर और अपने लोगों पर आती है तो फिर इन रागिनी जैसे 36 से निपटना आता है मुझे। अक्षत की ऐसी जोश भरी बातें सुनकर विवान भी उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना मेरे भाई वाली बात, बस अब आप हमेशा इसी तरह से रहिएगा और ऐसे रागिनी जैसे लोगों के लिए खुद को बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दीजिएगा, हम मिलकर उससे निपट लेंगे। नैना भी वहां पर उन दोनों भाइयों के बीच बैठी हुई पूरी बात सुन रही है और पूरी बात सुनने के बाद वो एकदम से कुछ सोचते हुए बोली, अरे लेकिन रुको, तुम लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो उसके पुराने कांड के बारे में पता चलने के बाद, लेकिन क्या इस बात का कोई भी सॉलिड प्रूफ है जो ये सब कुछ साबित करे? और अगर वो रागिनी इतने बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है तो वो जरूर बहुत ही शातिर लड़की है और हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। नैना की बात के सपोर्ट में विवान ने कहा, भाभी इज राइट, हमेशा हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना होगा। उन दोनों की बात सुनकर अक्षत भी इस बारे में सोचने लगा और फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने असिस्टेंट अजय का नंबर डायल करने लगा और उसे कॉल पर बात करता देख विवान भी वहां से अपने रूम में चला गया। नैना उसे बात करते हुए सुन रही है लेकिन फिर वो भी उठकर चेंज करने के लिए अपने रूम की तरफ ही जाने लगी और अक्षत की बात जब तक खत्म हो गई तो उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और आगे जाती हुई नैना को उसकी कमर से पकड़ते हुए रोक लिया। इस तरह एकदम पीछे से पकड़ने पर नैना ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या क्या कर रहे हो अक्षत, छोड़ो वो विवान आ गया तो अभी यहाँ पर। नैना की बात सुनकर अक्षत ने तुरंत ही शिकायत करते हुए कहा, क्या कर रहा हूँ, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को अब मैं हग भी नहीं कर सकता क्या, पता है कितने टाइम से साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया हमने। उसकी इतनी सारी शिकायतें सुनकर नैना पीछे मुड़ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ पता है काफी टाइम हो गया, लेकिन सिचुएशन भी तो ऐसी चल रही है, कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं है तो ऐसे में कहाँ हम अपने बारे में सोच सकते हैं, और मैं तो वैसे भी हमेशा तुम्हारे साथ हूं ना।
अक्षत ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, आई नो दैट, बट कभी कभी फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए होता है ना। जब टेंशन से सिर दर्द होता है तो मेरे बालों को सहलाने वाले तुम्हारे इन हाथों को बहुत मिस करता हूँ। जब स्ट्रेस में होता हूँ तो अपने कंधों पर मसाज वाले तुम्हारे प्यारे हाथ मिस करता हूँ, और जब नींद नहीं आती ना तो तुम्हारी गोद, वो भी बहुत मिस करता हूँ, जिस पर सिर रखकर मुझे हमेशा बहुत आराम से नींद आ जाती थी। अक्षत के एक गाल पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए नैना ने मुस्कुराकर कहा, यू आर सो स्वीट अक्षत, इतनी प्यारी और स्वीट बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। उसकी बात पर अक्षत एकदम सीरियस चेहरे के साथ बोला, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो नैना कि ये सब सिर्फ बातें नहीं, मेरी फीलिंग, मेरे जज्बात हैं तुम्हारे लिए, वो सारे ख्याल जो तुम्हें लेकर मेरे मन में आते हैं हमेशा। उसे इस तरह सीरियस होकर ये बोलते हुए सुनने के बाद नैना ने वहीं पर खड़े होकर एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर अपने हाथों की उंगलियाँ उसके हाथ में फंसाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ मुझे पता है सब कुछ, बहुत अच्छे से पता है, इसलिए चलो। उसके इस तरह एकदम बदले हुए रवैया को देखकर अक्षत ने कन्फ्यूजन से पूछा, कहाँ? नैना ने बिना उसकी तरफ देखे बोला, हमारे रूम में और कहाँ। अक्षत शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांक कर देखने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा तो ये इरादे हैं तुम्हारे, अब समझ आया मुझे। अक्षत की ऐसी बात सुनकर नैना के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो अक्षत से छुपाते हुए एकदम सीरियस होने की एक्टिंग करती हुई बोली, स्टॉप इट अक्षत, चलो अच्छे से हेड मसाज देती हूँ और फिर सो जाना मेरी गोद में सिर रखकर, एक अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत है तुम्हें। इससे ज़्यादा तो अक्षत इस वक्त और कुछ चाहता भी नहीं है, इसलिए वो एकदम किसी छोटे से बच्चे की तरह नैना का हाथ पकड़कर चुपचाप उसके पीछे पीछे रूम तक चला गया। दूसरी तरफ स्वीटी का रूम। स्वीटी शावर लेकर बाहर निकली तो वो पहले से काफ़ी अच्छा और रिफ्रेश फील कर रही है। वो अपने गीले बाल तौलिए से पोंछते हुए शीशे में खुद को देख रही है। तभी पीछे साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ तो उसका ध्यान अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ गया। स्वीटी ने जल्दी से आगे हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल फ़ोन उठाया तो देखा स्क्रीन पर अरुण का नाम लिखा हुआ था और वो समझ गई कि अरुण जरूर सुनैना के बारे में पूछने के लिए ही फ़ोन कॉल कर रहा होगा, क्योंकि पहले दिन वो अपने मम्मी पापा के साथ आया था और उसके बाद दोबारा बस एक बार ही हॉस्पिटल आया, और इसीलिए शायद उसे सुनैना की फ़िक्र हो रही होगी, लेकिन और किसी को वो कॉल नहीं कर सकता इसीलिए ही उसने स्वीटी को फ़ोन किया है। स्क्रीन पर अरुण का नाम देखकर ये सब कुछ स्वीटी के मन में आया, लेकिन फिर भी उसने वो फ़ोन कॉल रिसीव कर लिया। स्वीटी कॉल पर, हेलो अरुण, अपनी तरफ से अरुण की आवाज़ आई। हाँ स्वीटी, कहाँ पर हो तुम, कैसी हो, ठीक तो हो ना, और सुनो दी, वो तो ठीक है ना। उसके सवाल पर स्वीटी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे भी भाभी के बारे में पूछ सकते हो मुझसे, मैं समझती हूँ आखिर वो तुम्हारी बहन है तो तुम्हें उनकी फ़िक्र होगी। अरुण को लगा वो उसे ताना मार रही है, इसलिए उसका मुँह बन गया। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, मुझे सच में तुम्हारी भी फ़िक्र है। क्रमशः